हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अगर वाकई तुम्हारी बात सच है तो फिर जो तुम कहोगी मैं वही करूँगी। अब जैसे ही स्नेहा जी ने ये कहा, झलक ने मुस्कुराकर अपनी माँ को गले से लगाया और बोली, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। और जल्दी ही वो वहाँ से बाहर निकल गई थी। अब झलक के दिमाग में चारों तरफ से उलझने भर चुकी थी। वो सोचने लगी थी कि अचानक से वो बॉयफ्रेंड कहाँ से आएगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसलिए झलक ने फटाफट से अपने दोस्त नीरज और प्राची दोनों को ही कॉन्फ्रेंस कॉल कर दिया और जल्दी से घबराई आवाज में बोली, यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आन पड़ी है। अपनी माँ के सामने मुझे एक बॉयफ्रेंड लेकर जाना है। क्या तुम्हारी नज़र में कोई है जो मेरा बॉयफ्रेंड बन सके? अब जैसे ही उसने फ़ोन करके सीधे सीधे इस तरह से फटाफट बोल दिया, पहले तो नीरज और प्राची दोनों ही बहुत देर तक हंसते रहे और झलक को छेड़ते हुए बोले, यार ये कैसी बात कर रही है? तुम एक तो तुम इतनी खूबसूरत पूरे 19 साल की लड़की होने वाली हो और तुम्हारा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। तुम जानती हो आजकल तो 15-16 साल की लड़कियां तक बॉयफ्रेंड बना रही हैं। और एक तुम हो कि तुमने आज तक किसी भी लड़के को अपने करीब नहीं आने दिया। वहीं प्राची चहकते हुए बोली, लेकिन यार तुझे तो लड़कों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, फिर तुझे अचानक से बॉयफ्रेंड की जरूरत क्यों पड़ी? तू अपनी माँ को सच भी तो बोल सकती थी ना? तब झलक उन दोनों पर बिगड़ती हुए बोली, अगर मैं उन्हें सच बता पाती तो क्या मैं तुम दोनों बेवकूफों को फ़ोन करती और तुम लोग मेरी मदद करने के बजाय ऊपर से मेरा कॉन्फिडेंस डगमगा रहे हो? मैंने कहा ना, मुझे कोई बॉयफ्रेंड चाहिए, तो मुझे कोई ना कोई रास्ता बताओ। इस तरह से मेरी हिम्मत मत तोड़ो और ना ही मेरा मजाक उड़ाओ। अब तो नीरज और प्राची दोनों ही झलक की सीरियस बात सुनकर एकदम चुप हो गए थे। और तब अचानक नीरज कुछ सोचते हुए बोला, यार वो आर्यन रायचंद है ना, तो उससे बात क्यों नहीं करती है? वैसे भी उसे तो लड़कियों का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो इस काम में माहिर है। वो आराम से तेरा बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग कर सकता है। अब जैसे ही नीरज ने ये कहा, झलक कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी, लेकिन अगले ही पल बोली, लेकिन यार वो एक नंबर का फ्लर्टी इंसान है और फिर वो मुझ जैसी बदसूरत लड़की का बॉयफ्रेंड क्यों बनना चाहेगा? तभी प्राची बोली, यार शायद तो भूल रही है, वो तुझे कितने प्यार से बात करता है और तुझे अपना दोस्त मानता है, और एक दोस्त होने के नाते वो तेरी मदद कर ही सकता है। एक बार तो ट्राई तो कर, बिना ट्राई करे तुम ऐसा कैसे कह सकती है कि वो तेरी मदद नहीं करेगा? अब जैसे ही प्राची ने ये कहा, झलक कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी और उसके बातों पर गौर करते हुए बोली, शायद तुम लोग ठीक कह रहे हो। तुम एक काम करो प्लीज, तुम कल की मेरी छुट्टी के लिए कोई एप्लीकेशन डाल दो, मैं तब तक आर्यन को फोन करती हूँ और उससे मिलकर सारी बातें बताती हूँ, हो सकता है वाकई वो मेरी मदद के लिए तैयार हो जाएं। अब जैसे ही झलक ने ये कहा, प्राची और नीरज दोनों ने ही हाँ कह दिया था और उन्होंने झलक के लिए नाइट शेड क्लब में एक दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन डाल दी थी और झलक सीधा आर्यन से मिलने जा पहुंची थी। आर्यन पहले तो झलक को देखकर काफी खुश हो गया था, क्योंकि झलक की कंपनी उसे काफी ज्यादा पसंद आया करती थी। भले ही झलक दिखने में बड़ी ही अगली, गंदी सी और बदसूरत सी लगा करती थी, लेकिन उसकी बातें कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ करती थीं। झलक जहाँ भी जाती थी वो वहाँ छा जाती थी। उसकी बातों से पूरा माहौल बन जाया करता था। एक अलग ही खूबसूरती सी पर्सनैलिटी थी उसकी, इसीलिए आर्यन को उसका साथ बेहद भाता था। हालांकि वो अपनी हर एक रात बड़ी ही खूबसूरत लड़कियों के साथ रंगीन किया करता था, लेकिन झलक के साथ उसे एक अलग लेवल का सुकून मिला करता था। अब जैसे ही झलक ने वहां जाकर आर्यन से उसका नकली बॉयफ्रेंड बनने की बात कही, वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और एक्साइटेड होकर बोला, बस इतनी सी बात है, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तब तब झलक ने फटाफट से आर्यन के हाथ को पकड़ा और वो खुश होते हुए बोली, अगर तुमने मेरे बॉयफ्रेंड होने के अच्छे से एक्टिंग की ना, तो पक्का मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना खिलाऊंगी, ये मेरा वादा रहा तुमसे, तो सौदा पक्का। अब जैसे ही बॉयफ्रेंड बनने के नाटक के उसमें उसने आर्यन को उसका पसंदीदा खाना खिलाने के लिए कहा, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी और वो मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाकर बोला, ठीक है, सौदा पक्का, लेकिन लंच में अपने फेवरेट और अपनी पसंद का रेस्टोरेंट में करूँगा, ठीक है। तब झलक ने उसे हाँ कह दिया था। फिलहाल के लिए वो आज काफी ज्यादा थक चुकी थी, क्योंकि एक तो झलक प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसे बात के बारे में नहीं पता था। हालांकि ज्यादा काम करने की वजह से वो काफी ज्यादा थक जाया करती थी, और कभी कभी सोचा भी करती थी कि अचानक से उसे ये क्या हो जाया करता है, क्यों उसे इतनी थकावट हो जाती है। फिलहाल वो घर जाकर सिर्फ और सिर्फ आराम करना चाहती थी, और आराम करने के बाद, क्योंकि आज ठीक पर शाम को 5 बजे उसे आर्यन को अपने बॉयफ्रेंड के रूप में अपनी माँ से मिलवाना था, तो इसलिए फटाफट से उसने शाम के लिए अपनी माँ के लिए खाना बनाया, क्योंकि आज उसने सारा दिन की छुट्टी ली थी, तो इसीलिए वो अब खाना बनाकर आर्यन को फोन करके अस्पताल की ओर रवाना हो चुकी थी। पर जैसे ही आधे घंटे के बाद जब झलक खुराना विला के ट्रस्टी अस्पताल में पहुंची, तो उसने देखा कि किस तरह आर्यन रायचंद तो एक बड़ा ही ज्यादा खूबसूरत से ब्लैक कलर का सूट पहने पूरी तरह से तैयार था, धूप का चश्मा लगाए एक स्पोर्ट्स कार के सहारे झुककर सिगरेट पीते हुए वो झलक का इंतजार कर रहा था। अब उसकी तरफ देखकर झलक झला गई थी, और फटाफट से उसने अपनी स्कूटी पार्क की। दन दनाते हुए जाते हुए पहले आर्यन की ओर देखकर उसके हाथ से सिगरेट लेकर फेंक कर अपने पैरों से कुचलते हुए उसकी ओर देखकर बोली, इस तरह के कपड़े पहनकर तुम मेरी माँ के सामने जाओगे, मेरी माँ एक नज़र में बता देगी कि तुम एक नकली बॉयफ्रेंड हो। पहले तो आर्यन को झलक की बात समझ में नहीं आई थी कि अचानक से वो कहना क्या चाहती है। फिर उसने अपने लुक पर ध्यान दिया, वो कुछ ज्यादा ही हैंडसम और डैशिंग लग रहा था, साथ ही साथ काफी ज्यादा अमीर भी लग रहा था। फिर उसने अपने सर पर हाथ दे मारा, फटाफट से उसने अपनी पहनी हुई महंगी जैकेट को उतार दिया था, और अपना चश्मा हटाया, और अपनी कार के रिव्यू मिरर में उसने अपने ब्लो ड्राई किए हुए छोटे बालों को ठीक किया। फिर उसका लुक थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, और फिर उसने अपनी एक आंख उठाकर झलक की ओर देखकर कहा, क्या अब ठीक है, अब मैं लग रहा हूँ ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड। अब जैसे ही मुस्कुराते हुए आर्यन ने ये कहा, झलक थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोली, ठीक है चलो, अब बहुत देर हो गई है। ऐसा बोलकर जल्दी ही वो लोग अब अंदर जाने लगे थे, और जैसे ही वो जाने लगे अचानक आर्यन रुका और बोला, अरे झलक रुको यार एक मिनट। अब झलक हैरान हो गई कि अब ऐसा इस इडियट को अब क्या काम पड़ गया। एक तो उसे आर्यन को साथ लाने में पहले ही थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा था, क्योंकि आर्यन कितना ज्यादा ओवर एक्टिंग करता है ये बात झलक अच्छी तरह से जानती थी। वो सोच रही थी कि कहीं उसकी माँ से पहले दिन ही पकड़ न लें। वेल, अब जैसे ही आर्यन वापस से अपनी गाड़ी के पास गया और उसने अपने हाथों में एक बड़ा सा फ्रूट्स का टोकरा ले लिया था, अब उस फ्रूट्स बास्केट को देखकर झलक घूरते हुए आर्यन की ओर देखकर बोली, ये सब क्या है, ऐसा लग रहा है कि तुम पूरा का पूरा सुपरमार्केट उठाकर यहाँ ले आए हो। तब आर्यन बोला, अरे यार पहली बार अपनी सासू मॉम से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो क्या खाली हाथ जाता। हाँ, अब जैसे ही आर्यन ने झलक की तरफ एक आंख मारते हुए ये कहा, झलक इरिटेट हो गई थी, और वो अपने दांत भींच कर उसकी ओर देख कर बोलती है, देखो आर्यन, तुम ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की कोशिश मत करना।